ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले रामकेशवौ जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिङ्गमाणौ विजहरतु रिङ्गमाणौ विजहरतुः। कालेन समय के अनुसार ब्रजता जो बीता थोड़ा गोकुले गोकुल में राम केशव राम और कृष्ण जानुभ्याम दोनों घुटनों सह साथ पाणिभ्याम दोनों हाथों से रिंग माड़ रेंगने लगे रेंगते हुए विजहरतुः विहार करने लगे। तो इसके पहले वर्णन हुआ था कि श्री कृष्ण और श्री बलराम माँ के गोद में थे, बहुत छोटी अवस्था, 100 दिन के थे। 100 दिन के थे तो श्रीपद गर्गाचार्य ने नामकरण संस्कार किया तब तक गोद में रहते थे या बैठे रहते थे जमीन पर या पालना में रहते थे या पलंग पर रहते थे। लेकिन थोड़ा समय बीतने पर अल्पेना कालेन ब्रजता जब थोड़ा समय बीता थोड़े समय में ही राम कृष्ण गोकुल में बकैया चलने लगे जानू से घुटना से और हाथ से चलने लगे जानू भ्याम सह पाणि भ्याम। इस प्रकार भगवान की यह रिंगण लीला है रेंगने की लीला। पहले वो भी चल नहीं पाते थे धीरे धीरे कोशिश करते थे कोशिश करते करते अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक्सपर्ट हो गए। बाहों को आगे करके और घुटनों को पीछे दोनों के सहारे पैरों को ठठेरते हुए चलते थे घसीटते हुए पैर को उठा नहीं सकते थे। तो इसको रिंगण लीला कहते हैं बकैया चलना। इसको ब्रजभाषा में घुटुरवन चलना कहते हैं। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगा और बच्चे जैसे देर करते हैं बकैया चलने में उतना देर नहीं हुआ। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं अल्पेन कालेन ब्रजता थोड़ा समय बीतने पर ही कृष्ण और बलराम जी दोनों चलने लगे जानुभ्याम सह पाणिभ्याम चलने क्या लगे रिंग मारो रेंगने लगे रिंग मारो और इसी में विहार करते थे। वास्तव में परमानंद में ब्रज में घूमने लगे आंगन में ही धीरे धीरे गली में कभी गए होंगे इन आंगन में और जहां निकट बछड़े रहते थे वह उधर भी जाते थे घूमने लगे। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, श्रुति म परे स्मृति मितरे भारतम अन्य भजंत भव भीता, भारतम अन्य भजंत भव भीता अहमी नंदम बंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। कुछ लोग सांसारिक सत्ता से डर करके, जन्म मृत्यु से घबरा करके श्रुति के अनुसार चलते हैं, श्रुति के अनुसार भजन करते हैं। तो जिसका करे, श्रुति तो परब्रह्म का वर्णन करते हैं। और कुछ लोग पुराणों को पढ़ते हैं, पुराण के अनुसार जीवन बिताते हैं। और कुछ लोग अन्य भारतम भवभीता, संसार से डरे हुए लोग कोई कोई श्रुति को मानते हैं और कोई स्मृति को पूजते हैं, कोई महाभारत को पढ़ते हैं। मतलब उसके अनुसार अपनी जो भी उपासना है, रहन सहन है, करते हैं। लेकिन मैं तो केवल एक ही काम करता हूं। रघुपति उपाध्याय जी कहते हैं, मैं अहमी नंदम बंदे, मैं तो नंद महाराज के चरण की वंदना करता हूं जिनके आंगन में परब्रह्म खेलता है। हमारा बस यही साधन है, अहमी नंदम बंदे। श्री प्रभुपाद जी शुरू में और अंत में इस पर पर्पोर्ट के दो बारी इस श्लोक को लिखे, श्रुति में परे स्मृति में तरे भारत मन्य भजंत भवभीता अहमी नंदम बंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है तब न दो बार लिखा है। तो हम तो नंद महाराज की वंदना करते हैं जिनके आंगन में परब्रह्म खेलता है। अगर नंद महाराज से प्रेम रहेगा तो उनके आंगन में ही परब्रह्म रहते हैं तो वो कहां दूर जाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा साधन यही है, अहमी नंदम बंदे जस्या लिंदे परम ब्रह्म। इस तरह श्री नंद बाबा के आंगन में कृष्ण बलराम रेंगना चालू किए, प्रारंभ किए। और यही उनका विहार था, विजहरतु, विहार करने लगे रेंगते हुए। किस तरह से विहार कर रहे थे उसको आगे कहते हैं, तौ अंघ्रिजुग्म मनुकृष्य शरी श्रीपंत तौ तौ अंघ्रि जुग्म मनुकृष्य शरी श्रीपंत घोष प्रघोष रुचिरं व्रज कर्दमेषु तन्नाद हृष्ट मनसौ अनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वदुपे यतुरंति मात्र हो। ये दोनों भाई कृष्ण बलराम तौ अंघ्रि जुग्मम अपने जुगल चरण को अनुकृष्य खिंच खिंच करके, मतलब सरी श्रीपंत, बकैया चलते थे तो दोनों पैर को, चरण को सरी श्रीपंत खींचते थे। और सरी श्रीपंतों का अर्थ बहुत जल्दी जल्दी सरक सरक करके चलते थे, ताबड़तोड़ ऐसे चलने लगे। सरी श्रीप का अर्थ होता है सरकने वाला प्राणी, जैसे सांप। सरी श्रीपंत और घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेषु, घोष प्रघोष रुचिरम क्यों चलते थे तो श्रीपद सिद्धर स्वामी जी अर्थ करते हैं कि घोष प्रघोष रुचिरम दोनों के चरण कमल में, दोनों के कमर में किंकिड़ी रहती थी और पैर में भी नूपुर, पैर में नूपुर और किंकिड़ी और भी कुछ बजने वाले सामान रहते थे तो उसको घोष कहते हैं। घोष का प्रघोष होता था, चलने से किंकिड़ी बजती थी, कमर की का जो आभरण है वो बजता था और कंकड़ हाथों का कंकड़ बजता था और पैर में नूपुर। इसको सुन करके भी बहुत आनंदित रहते थे, उनको पता नहीं था कि कहां से बज रहा है, कहां से आवाज आ रही है। तो उस आवाज को सुनने के लिए भी बार बार बकैया चलते थे। चक्रवर्ती पाजी लिखते हैं कि उनको ये पता नहीं था कि आवाज कहां से आ रही है, पर आवाज इतनी सुंदर थी कि उसको सुनने के लिए चलते थे। कहां चलते थे? तो ज्यादा कदा ब्रज कर्द में, ब्रज के कीचड़ में। ब्रज कीचड़ का अर्थ है गौओं के कारण जो कीचड़ हुआ है, उनके दूध से भींगी थी जमीन और बछड़ों के मूत्र से वो सॉफ्ट जमीन रहना, उसमें भ्रमण करते थे। यहां एक प्रश्न होता है कि जब कर्दम में घूम रहे थे तब सब फंसता नहीं होगा, किंकड़ी या कंकड़ या नूपुर? नहीं, नहीं फंसता था, आवाज होती ही थी। घोष प्रघोष रुचिरम, ये दोनों तब अंग्री जुगमम का विशेषण है। बहुत सुंदर लगती थी आवाज चरण में और कमर में और हाथ में। तन्नाद हृष्ट मनसौ, तन्नाद हृष्ट मनसौ, तन्नाद चरण के नाद से या कमर के नाद से, नाद मन ध्वनि आवाज, हृष्ट मनस, दोनों बिल्कुल प्रसन्न रहते थे। जैसे ऐसा लगता था कि दुर्लभ लाभ मिल रहा है, इसी सुंदर आवाज। अनुसृत लोकम, और कभी कभी दोनों भाई किसी के पीछे हो जाते थे, कोई गोपी, मातृभाव वाली गोपियां, या कोई अन्य गोपी, या कोई पुरुष उनके पीछे चलने लगते थे। ये भावना होती थी कि मेरी माँ है, पर कुछ दूर जाने के बाद पहचान लेते थे ये नहीं है, तब जल्दी भागते थे माता के पास। दोनों माताओं के पास भागते थे जल्दी, डर जाते थे। मुग्ध प्रभीतवत उपेयतु अंति मात्र, अंति मतलब समीप, उपेयतु अंति मात्र, जल्दी जल्दी फिर भाग करके वैसे बकैया। और मुग्ध प्रभीतवत, मुग्ध का अर्थ है जैसे बिल्कुल भोले भाले, और प्रभीत विशेष प्रकर्षण डरे हुए जैसे। वास्तव में डरते नहीं थे, लेकिन ये लीला थी भगवान की, इसलिए वत लिखा गया प्रभीतवत, डरे हुए की तरह हुए फिर लौटते थे जल्दी जल्दी। मात्र हो अंति, मैं दोनों माताओं के समीप। और पहले जाते थे तो उस समय ये ध्यान नहीं रहता था कि ये मेरी माँ है, कोई अनजान व्यक्ति से बच्चे घबराते हैं, भागते हैं। पहले भ्रम में होते थे कि मेरी माँ है, और बाद में पता चलता था कि नहीं। और कभी नंद बाबा का भ्रम होता था या अपने किसी स्वजन का, लेकिन बाद में पता चलता था नहीं नहीं नहीं, तो चले आते थे माता के निकट। तो माताएं क्या करती थी, तन्मा तरौ निज सुतौ घृणया सुनवंतौ पंकांग राग रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम दत्वा स्तनं प्रपिबतः स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मितालप दशनं जयतुः प्रमोदम्। तन्मातरौ, कृष्ण और बलराम की दोनों माताएं, मातरौ तन का अर्थ है तयोः मातरौ, दोनों की माताएं, निज सुतौ अपने पुत्रों को घृणया स्नुवन्ते, घृणा का अर्थ है स्नेह संस्कृत में, कृपा, स्नेह से जिनका स्तन स्नुत था, चुचुआता था, हमेशा स्तनों में दूध चुचुआता था, तो अपने दोनों पुत्रों को गोद में उठा करके और बहुत सुख मिलता था उन्हें। पंकांग राग रुचिरौ उपगुह्य दोर्भ्याम, अपने दोनों बाहों में अपने बच्चे को उठा लेते थे, गोद में उठा लेते थे। कैसा पंकांग राग रुचि रहू, जो आंगन में पंक था कीचड़ था वही अंगराग लगा रहता था, उनके शरीर में अंगराग जैसा है, अथवा अंगराग पहले लगाए होंगे लेकिन बाद में कीचड़ से भर गया था, इसके कारण उनका अंग और रुचिर लगता था और अच्छा लगता था। माताओं का इतना स्नेह है कि कीचड़ लगे हुए श्री कृष्ण और बलराम को अपने गोद में ले लेते थे। कोई भी माँ इसका विचार थोड़े करती है कि बच्चे में मिट्टी लगा है, ये लगा है, वो लगा है, वो तो जसोदा ही है अब रोहिणी थी। पंकांग राग रुचि रहो, पंक का अंगराग लगा है इसलिए दोनों भाई खूब सुंदर लग रहे हैं। तो पंक का अंगराग लगाए हुए श्री कृष्ण और बलराम को गोद में उठा लेते दुर्भ्याम, दत्वा स्तनम और स्तन दे करके प्रपीबतोस्व मुखम निरीक्ष, जब दोनों भाई पीने लगते थे स्तन तो स्तन पीते समय उनके मुख को देखने लगती थी, दूध पिलाते हुए देखती थी, मुग्धस्म ताल्प दशनम जगतु प्रमोद, मुख का विशेषण सुखदेव जी बता रहे हैं कैसा मुख है, मुग्ध स्मिताल्प दशनम, स्मित अल्प दशनम, जिस मुख में मुग्ध भाव से स्मित है, थोड़ी हंसी है, दूध पी रहे हैं तो हंस रहे हैं, और अल्प दशनम छोटे छोटे दांत हैं, दो दो दांत और वो भी बहुत छोटे छोटे, अल्प दशन मुख में, जिस मुख में अल्प दशन है छोटे छोटे दांत और कम दांत, ऐसे मुख को देख करके चुम करके और दूध पिला करके जजतुह प्रमोदम प्रकृष्ट मोद को प्राप्त करती थी, बहुत आनंद में होती थी दोनों माताएं। जरिहंगना दर्शनीय कुमार लीलौ अंतर ब्रजे तदबला प्रगृहित पुच्छे। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि कृष्ण बलराम की लीला को अबलाएं देखती थी श्री गोपीजन, क्योंकि अभी बाहर ये लोग नहीं जाते थे तो वे लीलाएं देखती थी, और कुछ बछड़े जो बहुत प्रकृष्ट गौओं के बछड़े होते थे वो नंद बाबा के आंगन में ही बैठे रहते थे, वो भी आसक्त थे कृष्ण बलराम में, वो जाते ही नहीं थे, इनको देखते रहते थे, चलबल करते थे, कभी कभी हंकने पर भी बाहर नहीं जाते थे। तो कृष्ण बलराम क्या कर रहे थे, चूंकि अंगना दर्शनीय लीला, स्त्रियों को ही इनकी लीला का दर्शन होता था, तो अंतर ब्रज, ब्रज के भीतर आंगन में तदबला प्रगृहित पुच्छे, तो कभी कभी कृष्ण बलराम ऐसे बकरियां रेंगते हुए जा रहे थे तो बैठे हुए बछड़ों की पूछ पकड़ लेते थे, बछड़े बैठे हैं और तब तक तो वे मुग्ध भाव से कौन पूछ पकड़ा कौन पूछ पकड़ा उठकर खड़े होकर के और चलने लगते थे। तो ये दोनों इतने मुग्ध हैं, इतने अज्ञ हैं कि चाहे तो जल्दी छोड़ देना चाहिए पूछ को, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं, और जहां जहां बछड़ा जाता है और कोमल जमीन है ही घसीटते हुए ले जाते, पुच्छ गृहित पुच्छ वत्स इतस्तत उभौ अनुकृष्य मानव, दोनों खींचे जाते थे बछड़ों के द्वारा, और ऐसा भाव कर रहे हैं कि गोपियों को ऐसा भाव व्यक्त कर रहे हैं कि इनको ये पता नहीं है कि छोड़ देना चाहिए, और कुछ रोते हुए से भी वो खींचते जा रहे, अथवा आनंद में भी कुछ दूर खींचे गए तो बच्चों का आनंद होता है, तो बछड़े खींच रहे थे, ऐसे बछड़े बहुत सीधे साधे थे। और ये भी दोनों अभी तो बच्चा है, इनको खींचने में बछड़ों को कोई परिश्रम नहीं होता था। तो प्रायः ये सब लीलाएं चलती रहती थी। गृहित पुच्छ वत्स इतस्ततः अनुकृष्य मानव, यहां वहां जहां तहां वो खींच, और ये रोज लीलाएं होती थी और माताएं मना करती थी, पूछ मत पकड़ो, बछड़े लात मार देंगे, मार देंगे, घाव लग जाएगा। लेकिन वो लात मारने वाले बछड़े नहीं थे। ये लीला चलती रहती थी। इस लीलाओं को गोपियां यशोदा की सखियां थी प्रेक्षंत उज्जित गृहा जासुर हसंत। इस तरह से कृष्ण बलराम जब बछड़ों के द्वारा खींचे जाते थे तो इस लीला को प्रक्षंत प्रइक्षंत बहुत ध्यान से देखती थी। उज्जित गृहा, अपना घर और घर का काम सब छोड़ छाड़ करके इन लीलाओं को देखती रहती थी। उज्जित गृहा, त्यक्त गृहा, और इसको देखने में उन्हें बड़ा सुख मिलता था। जहिसु जय हृषु, हर्ष होता था, आनंद होता था, हसंत और हंसती रहती थी। कृष्ण बलराम की इस मुग्ध लीला को देख करके हंसती रहती थी। ये तो एक लीला का वर्णन किया गया, ऐसी लीलाएं अनंत अनंत होती ही रहती थी। और इतने आकर्षक हैं दोनों भाई कि उनको देखने, उनकी लीला देखने के लिए अपना अपना घर छोड़ करके, घर का काम धंधा स्वजन आदि सब छोड़ करके देखती रहती है, परम आनंद में रहती है। और रोहिणी और यशोदा क्या करती थी, इसको अंतिम श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। श्रृंग्यग्नि दंष्टि असि जल द्विज कंठ के व्यह क्रीड़ा परव अति चलव स्वसुतव निषेध। ये दोनों भाई क्रीड़ा परव, हमेशा क्रीड़ा में रहते थे, खेल में रहते थे, और खेल में भी अति चलव बहुत चंचल थे, बहुत चंचल, कहीं भी एक जगह बैठ नहीं सकते थे, अति चलव। और विशेष करके श्रृंगी, सिंह वाले जानवर को पकड़ते थे, श्रृंगी कहते सिंह वाला जानवर, जैसे बैल, गाय और भी जानवर सिंह वाले, और अग्नि, कहीं आग जलती थी, चाहे चूल्हा में चाहे जग कुंड में कभी आग, तो आग की लपट को पकड़ते थे और ये सोचते थे कि ये नाच रहा है, कितना सुंदर है। जब अग्नि की लपट उठती थी तो उसके साथ तो उसको पकड़ करके नाचना चाहते थे। तो माताएं दौड़ती थी, यशोदा जी और रोहिणी जी, सिंह वाले जानवर के साथ खेलना चाहता है तो ये मारेगा, और अग्नि को पकड़ना चाहता है। दृष्टि, दांत वाले जीव, ये भेद नहीं करते थे, दांत वाले जीव के पास पहुंच जाते थे, जैसे बानर, कुत्ता, बिल्ली, दांत वाले जीव, कोई भय नहीं होता था बानर को पकड़ने में, उसके साथ होने में। यह बात अवश्य है कि ब्रज के जो भी जीव थे हिंसक नहीं थे, वही भगवान के साथ होने पर तो सबका स्वभाव बदल जाता, पर माताएं परेशान रहती थी, घर का कोई काम नहीं कर पाती थी, केवल इनको निषेध, इनको मना करने में। गृह्यापि कर्तमपि यत् तत्र न तज्जनन्यो सेकात आपतुरलम मनसो नवस्थ। घर का काम करने में न सेकाते, सेकाते का समर्थ नहीं थे, हमेशा इधर कृष्ण को पकड़ो, बलराम को पकड़ो, ये वो, ऐसी में दोनों तबाह रहते थे। तबाह मतलब स्पिरिचुअली तबाही, हमेशा पकड़ने में, मना करने में, कभी दोनों भाई तलवार उठा लेते थे, तलवार उठा ली तो उनको पता नहीं है कि धार में हाथ लग जाएगा, इसके नोक से हानि होगी, ये होगा, और सिंह वाले जानवर के पास पहुंच जाते थे, अग्नि के पास, दृष्टि के पास। दृष्टि मतलब दृष्ट मतलब दांत, दांत वाले काटने वाले जीव, और द्विज, द्विज मतलब पक्षी, भयानक पक्षी के पास पहुंच जाते थे। और द्विज का एक अर्थ सांप भी होता है, दो बार जन्म लेता है, एक बार अंडा से एक बार अंडा को फूल करते। तो सांप के पास, पक्षी के पास और जल, जल रखा है, गहरा है, नाद है, बस उसमें कूद जाना है। ये और भी आसपास जो जल होता था, कंटक के भी, कंटक, कंटक है कांट वाला वृक्ष या कांट रखा हुआ है, झाक है, घुरान है, बस उस पर जाते थे। तो हमेशा उनको पकड़ करके रखने में ही सारा समय इनका बीतता था। इसीलिए घर का बहुत आवश्यक काम भी ये दोनों माताएं नहीं कर पाते थे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस तरह मनसो अनवस्था, मन की अनवस्था बेचैनी, हमेशा चिंता में रहती थी, लेकिन यह चिंता स्पिरिचुअल चिंता है, कोई लौकिक चिंता नहीं है, दिव्य चिंता है। वो कभी दुखी नहीं होती थी, आनंद में ही रहती थी, और हमेशा इनको मना कर रहे हैं। जब तक जगे रहे तब तक चैन नहीं था दोनों माताओं को, यहां पकड़ो, यहां पकड़ो, यहां पकड़ो, और थोड़ा भी पकड़ करके छोड़ा तो फिर वही काम करने लगते थे। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अति चलो, अति चल, चल में चंचल, अतिशय चंचल। तो श्री कृष्ण की, श्री बलराम जी की रिंगण लीला है, सबसे अधिक सूरदास जी ने लिखा है, गाया है इस विषय में, तो हम कुछ पद सूरदास जी का लिए हैं, इसको पढ़ेंगे हम लोग, गाएंगे।